नमो भगवते वासुदेवा।
हाय, क्या हाल चाल है? मौज है पूरे हैं वे मर्द जो हर हाल में खुश हैं, जो परिस्थितियों की फरियाद करता है वो समता का रस नहीं ले सकता है। हर हाल में प्रसन्न रहना बहादुरों का काम है। कभी चबावे चना चबीना, कभी लपटा ले खीरांदी, वारे मौज फकीरांदी, कभी तोड़े शाल दुशाले, कभी गुदड़ियां लीरांदी, वारे मौज फकीरांदी, मंगतंग के टुकड़े खांदे, जय जय सियाराम महाराज भिक्षा कराई, मंगतंग के टुकड़े खांदे, चल दे चाल अमीरांदी, वारे मौज फकीरांदी, वारे वाह। फकीर उसको नहीं कहते हैं जो लाचार मोहताज है, भीख मंगा है, नहीं, फकीर वह है जिसने चिंताओं की संशयों की फाकी कर ली। भगवान हमारे, हम भगवान के, उसमें संदेह नहीं है, उसका नाम फकीर। संशय सबको खाते, संशय सबका पीर, संशय की जो फाकी करे उसका नाम फकीर। हद टूपे सो ओलिया, बेहद टूपे सो पीर, हद बेहद मैदान में सोयादास करी। हद दो हद मैदान मतलब क्या है कि परमात्मा की विश्रांति, निश्चिंतता, विश्रांति एक ऐसा अद्भुत गढ़ है कि सारी शक्तियां, ऐसा कोई सामर्थ्य नहीं कि भगवत विश्रांति से प्राप्त न हो। ये करूं, ये करूं, यहां जाऊं, वहां जाऊं, वहां जाऊं, भटकने की जरूरत नहीं है। राम में विश्रांति पाने की कला सीखने की जरूरत है। विश्रांति, भगवत शांति, भगवत सुख, भगवत आनंद में निसंकल्प दशा। निसंकल्प दशा अगर 2-3 मिनट आ जाए तो बाप रे बाप, सिद्धि तुम्हारे चरणों में। ये ऐसी विश्रांति, ये विश्रांति पाने का प्रभात काल नींद में से उठ के वहां तिलक करके शांत बैठे रहे, उससे विश्रांति में मदद मिलेगी। आसन प्राणायाम करके बीच में जो गैप मिलती उसमें विश्रांति करे तो बड़ी मदद मिलेगी। सत्संग सुनते सुनते अहोभाव में आकर शांत हो जाए, उससे मदद मिलती, विश्रांति बढ़ा दे। सारे भजनों का फल यह है कि चित्त परमात्मा में विश्रांति वाले। भगवान नाम के बाद जो 2 सेकंड बच जाते हैं विश्रांति के लिए होते हैं। जैसे एक तरंग उठा दूसरा उठने में जो अवधि है वो समुद्र का स्थिति है, ऐसे ही अपने चित्त में संकल्प विकल्प, विकल्प संकल्प चलते रहते हैं, नहीं तो फिर निद्रा में चित्तलीन हो जाता है। लेकिन सात्विक खुराक और सत्कर्म और भगवत अर्पित बुद्धि से किए हुए कर्म अपने चित्त को निर्भर कर देते हैं। फिर भगवत नाम उच्चारण करके एक मंत्र उच्चारण किया और फिर दूसरा करने में थोड़ा सा अंतर रखना चाहिए, वह अंतर विश्रांति के लिए होता है। विश्रांति का मतलब है संकल्प विकल्पों का ताना बोना नहीं बोना, अथवा तो आलस्य तंद्रा निद्रा में न जाना। इस विश्रांति के प्रसाद से सारे दुखों का अंत हो जाता है, सारी वासनाओं का, कर्म बंधन में फंसाने वाले हल्की वृत्तियों का अंत होने में बड़ी मदद मिलती है। इस प्रकार उच्चारण हो और आसमान में नजर टिक जाए, अथवा तो भगवान के श्री विग्रह में नजर टिक जाए, अथवा तो भगवत प्रेम में चित्त टिक जाए, इससे विश्रांति मिलती है। चित्त की विश्रांति प्रसाद की जननी है और उस प्रसाद से सारे दुखों का अंत हो जाता है। दुखी चित्त ही बाहर से सुख अंदर भरने की कोशिश करता है। कितना भी कुछ पा लें, भोग लें, घूम लें, फिर भी ललक झलक तो यही रहती कि सुख ही अधिक सुख। भगवान कहते हैं, यन लब्धवान चापारम लाभम मन्यते न अधिकम तथा। जिस लाभ से बढ़कर कोई लाभ नहीं है, जिसमें स्थित होने के बाद बड़े भारी दुख की भी कोई असर नहीं होती अपने चित्त में, ऐसे आत्मलाभ सर्वोपरि लाभ। तो एक श्वास हम लेते हैं वो ठंडा होता है, जब पान अपान की गति का संघर्ष होता है ऊर्जा बंद, और श्वास छोड़ते हैं तो गर्म होता है। अनुभव करके देख सकते हैं, श्वास लिए ठंडा और छोड़ेंगे तो थोड़ा गर्म। तो श्वास लिया उस समय और श्वास छोड़ा, उसके बीच की जो अवस्था है वो आत्मा परमात्मा श्री कृष्ण के मौजूदगी की अवस्था है। ये गलती मत करना कि श्री कृष्ण केवल अर्जुन के रथ पर ही बैठे हैं। सभी के हृदय में इस भगवान व्याप्त है। ईश्वरो सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। तो कृष्ण है अर्थात सबको कर्षित, आकर्षित और आनंदित करने के सामर्थ्य से संपन्न वे भगवान है। उस भगवान की सत्ता में विश्रांति पाया हुआ चित्त दोषों से मुक्त होने लगता है, पापों के संस्कारों से मुक्त होने लगता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। अपना जीवन सफल हुआ कि नहीं हुआ उसका पाराशीशी है कि हमने अपने मनुष्य जन्म के तीन काम कर लिए कि नहीं किए, क्योंकि जन्म जात हमारे में ये तीन योग्यताएं छुपी होती है, करने की शक्ति, मानने की शक्ति और जानने की शक्ति छुपी हुई है। और हम बच्चे थे, शिशु थे, तभी भी कुछ न कुछ करते रहते थे। कहीं आवाज हुआ तो जानकारी की वृत्ति इधर देखती उधर देखती। बूढ़े भी हो जाए तभी भी पूछते कौन था, क्या बोलता था, हालांकि लेना देना नहीं, बुरा तुम्हारा नहीं, नहीं फिर भी कौन था। तो जानने की रुचि, करने की रुचि और मानने की रुचि, करना, जानना और मानना, ये तीन योग्यताएं जन्मजात है। तो करने योग्य अगर आपने कर्म कर लिया है तो आपको मृत्यु का भय नहीं सताएगा, मौत का डर नहीं रहेगा। जैसे स्कूल में जो विद्यार्थी पाठ पक्का करने योग्य उसको कर लेता है तो कोई आकर पूछे तो जी नहीं चुराएगा, घबराएगा नहीं, अपितु हाथ ऊपर करेगा, मुझे पूछो मुझे पूछो। जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कबीर जी ने कहा। जिस मौत से सारी दुनिया कांपती है मेरे घर आनंद है। कब मरिए कब मिलिए पाइए पूर्ण परमानंद, कब मरेंगे और कब मिलेंगे पूर्ण परमानंद कृष्ण स्वभाव से। अभी तो शरीर है, नाना धोना खाना पीना संभालना देना लेना, शरीर का उपाधि चली अशरीरी आत्मा में, परब्रह्म परमात्मा में जैसे तरंग शांत हो जाए तो सागर हो जाता है, ऐसे ये जीव शांत आत्मा को जानकर उसमें निसंकल्प दशा में परब्रह्म परमात्मा में हो जाता है। फिर उसको पता चलता है कि आज तक की जो मृत्यु थी वो केवल बेवकूफी के कारण थी, नासमझी के कारण थे जन्म और मृत्यु। जन्म मृत्यु मेरा धर्म नहीं है, पुण्य पाप तामसी वृत्ति, राजसी वृत्तियों से पाप होता है, सात्विक वृत्ति से पुण्य होता है। लेकिन वृत्तियां उठ उठ कर चली जाती है, बन बन के बिखर जाती है, उन वृत्तियों के विपार मेरा कृष्ण स्वभाव। कृष्ण का मतलब जो कर्षित करता है, आकर्षित करता है और आनंदित करता है, वो आत्मा परमात्मा जो सर्वव्यापक सर्वेश्वर। तो पाठ अच्छी तरह से कर लिया है तो फिर आप जी नहीं चुराएंगे। ऐसे ही मनुष्य जीवन में करने की शक्ति का आपने ठीक उपयोग किया तो मृत्यु का भय नहीं सताएगा, जीने की लालच नहीं, मरने का भय नहीं। जानने की शक्ति आप अगर ठीक अपने को शुद्ध बुद्ध निरंजन आत्म रूप में जान लिया, आपको मृत्यु का भय नहीं होगा और सुख की बाहर के से सुख की लालच नहीं होगी। मृत्यु का भय नहीं रहा, सुख की लालच नहीं रही, मानने की शक्ति अगर आपने ठीक से अपने आत्मा राम को मैं रूप में मान लिया तो फिर आपको जगत की कोई भी किसी भी मान्यता से राग द्वेष नहीं रहेगा। संसार है, सब अपने अपने मन की कल्पना में दौड़े, ये सब मन की कल्पना ही तो माया है। माया के गहराई में मेरा आत्म स्वभाव कुटस्थ है। कुट कहते हैं सोनार की एरन को, उस पर कितने ही गहने बनाओ, जेवर बनाओ चांदी के सोने के, वो बदल बनते जाते, लेकिन एरन जो कि त्यों, ऐसी वृत्तियां कई उठती जाती, विचार कई उठते जाते, कर्म कितने ही हो के मिट जाते, लेकिन कुटस्थ मेरा परमात्मा ज्यों का त्यों है सोहम स्वभाव को जान लिया। साधक आरती में गाते ज्योत से ज्योत जगाओ सतगुरु, मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, अंतर में युग युग से सोई चित्त शक्ति को जगाओ, सोहम नाद सुनाओ सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। भगवान कृष्ण कहते हैं ज्योति शाम अपि तद ज्योति, वो मैं आत्मा ज्योतियों की भी ज्योति हूँ। सूरज ज्योति है, चंदा ज्योति है, अग्नि ज्योति है, और भी बल्ब आदि ज्योतियां हैं, दीपक आदि, इन सभी ज्योतियों को देखने के लिए नेत्र ज्योति चाहिए, नेत्र ज्योति देखने के लिए चाहिए, सुनने के लिए श्रोत्र ज्योति चाहिए, स्वाद के लिए रसना ज्योति चाहिए, गंध के लिए धारणा ज्योति चाहिए, स्पर्श के लिए स्पर्श ज्योति चाहिए कि ये ठंडा है, ये गर्म है, ये कोमल है, ये कठोर है। इन पांचों ज्योतियों को देखने वाली मन ज्योति है। मन सो गया तो आंख फटी रहेगी, फिर भी नहीं देखते हो, कान पड़े हैं फिर भी छोटी मोटी बात हम नहीं समझ सकते, प्रगाढ़ नींद में तो ज्यादा मुलायम और कठोर का पता भी नहीं चलता। फुटपाथ वाले को भी वही प्रगाढ़ नींद, और पलंगों पे कोमल शया वाले को भी वही। तो एक होती है सूरज चंदा वाली ज्योति, उसको जानने वाली इंद्रिय ज्योति होती, इंद्रिय ठीक है कि नहीं है उसको देखने वाली मन ज्योति होती है। मन हमारा शांत है कि चंचल है, मन देख रहा है कि नहीं देख रहा है, उसको देखने वाली बुद्धि ज्योति होती है। बुद्धि हमारी ठीक है कि बेठीक है, उसको देखने वाली जीव ज्योति होती है। जीव हमारा हमारा जी घबराता है, हमारा जीवात्मा संतुष्ट है, उसको देखने वाली जो ज्योति है वो आत्म ज्योति कृष्ण ज्योति है। ज्योति शाम अपि तद ज्योति, भगवान कहते हैं ज्योतियों की भी वह परम ज्योति आत्म ज्योति है।
तमसा परम उच्चते, वे अंधकार से अज्ञान से परे हैं। हम इस बात को, इस विषय को जानते हैं, उसको भी वो ज्योति जान रही और नहीं जानने को भी जान रहे। नींद में सो गए थे, कुछ नहीं देखा, आनंद से सो गए थे, उसको भी जानते हैं। स्वप्न आया, उसको भी जानते हैं और जाग रहे, उसको भी जानते हैं। तो जागृत बदल जाता है, स्वप्ना बदल जाता है, नींद की गहराइयां बदल जाती, फिर भी जो नहीं बदलता वो ज्योतियों का ज्योति अपना आत्मदेव है, उसको ज्यों का त्यों मान लिया। तो करने की, जानने की, मानने की शक्ति का सदुपयोग हो गया। और इसमें भगवत भक्ति बड़ी मदद करती है। योग तो कर्ता को करना पड़ता है, कर्म भी कर्ता को करना पड़ता है, तप भी तपस्वी को करना पड़ता है। इसमें जीव के बल की प्रधानता है, कर्म में, योग में, तप में और भी तमाम प्रवृत्तियों में कर्ता की प्रधानता है। लेकिन जब भगवान का होकर विश्रांति पाकर भगवान की प्रसन्नता निमित्त भक्त करता है तो उसमें भक्त का अपना अहम नहीं होता है, भक्त की प्रधानता नहीं होती, भगवत कृपा की प्रधानता होती। जैसे एक है बच्चा अपने बल से गाड़ी लेकर चलता है तो कभी गिरता है, लटकता है, लथड़ता है, चलना सीख रहा है। दूसरा है कि पिता ने उसको उंगली दे रखी है तो अब पिता की उंगली का आधार है। लेकिन उससे भी एक ऊंची अवस्था है कि पिता ने उसका हाथ पकड़ लिया है, अब वो बच्चा तेजी से चल सकता है। तो ऐसे ही जब भक्ति निर्ममो निरहंकार भाव से होती है, इस व्यवहार में सच्चाई होती है, पर धन पर स्त्री पर धन से बचता है, परहेज करता है, तो मन पवित्र होता है। फिर भगवान उसके मन का हाथ पकड़ लेते, उसके मन को, मति को, उसके जीवत्व को भगवान पकड़ लेते, फिर अपने आप भगवान उसे चला देते, परम पद तक पहुंच जाता है। मद भक्ति लभते परा, मेरी परा भक्ति की उसे प्राप्ति हो जाती है। तो भगवान की पराभक्ति प्राप्त हुई तो फिर करने की, मानने की, जानने की शक्ति का पूरा सदुपयोग हो गया। फिर मृत्यु का भय नहीं, सुख की लालच नहीं, दुख से परेशान नहीं, सब स्वप्ना और परब्रह्म परमात्मा ज्योतियों का ज्योति चैतन्य अपना, उसने मनुष्य जीवन का पाठ पूरा कर लिया। वो तो तर गया, उसके संपर्क में आने वाले भी तर जाते। वो तो मुक्त हो गया, उसके संपर्क में आने वाले भी मुक्ति के मार्ग में सहज में ही गति कर लेते। नहीं तो ये जीव ने न जाने कितने कितने जन्म लिए, कहाँ कहाँ नाक नहीं रगड़ा, कहाँ कहाँ सिर नहीं पटके झटके। देव ऋषि नारद जी जा रहे थे विशालापुरी में, शनकादि ऋषियों ने कहा नारद जी आप इतने उतावले, इतने अधीर की नहीं, जल्दी जल्दी जा रहे, मानो किसी का धन दौलत मकान वैभव फैक्ट्रियां लूट गई हो, इस तरीके से आपका जाना उचित नहीं लगता है। देव ऋषि कहाँ जा रहे हो? शनकादि ऋषियों ने पूछा, तब देव ऋषि नारद ने उनका सत्कार वंदन करके कहा कि प्रभु ये कलयुग ने सारा उथल पाथल कर दिया है। जो ज्योतियों की ज्योति परमात्मा सुख पाने के लिए, परमात्मा विश्रांति पाने के लिए मनुष्य जीवन हुआ था, वो भारत में उस पवित्र भारत भूमि को में दिव्य लोक से आया विचरण करता कि अब कलयुग के प्रभाव से, कलयुग के भाई अधर्म ने सब खंडित कर दिया। तीर्थ में भी दुष्ट लोग रहने लग गए, लुटेरे लोग रहने लग गए, मलिनता का वातावरण हो गया। काशी गया, मथुरा गया, द्वारिका गया, इधर गया उधर गया, महाराज रंजक रंग क्षेत्र गया, पुष्कर गया, विचरण करते करते कहीं भी जीव को परमात्म विश्रांति मिले ऐसा वातावरण नहीं देखा। फिर उदास होकर मैं वृंदावन पहुंचा, जहां आप कथा सुन रहे जयराम जी। मैं वृंदावन पहुंचा तो महाराज मैंने क्या देखा कि एक युवती अपनी सखियों से घिरी हुई सैकड़ों सखियां कोई पंखा आंक रही, कोई पानी ला रही है, छिटक रही है, कोई सांत्वना टाडस बंधा रही है। उस महिला को अपनी सखियों के बीच घिरी हुई दो बुढ़े वृद्ध, लेकिन वो वृद्ध कैसे थे कि वो वृद्ध मूर्छित थे। उनको देखकर वो बाई विलाप कर रही थी और उस बाई की मुझ पर नजर पड़ी। बाई ने कहा, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मम चिंता मम विनाशे। आप संत पुरुष हैं, आपका दर्शन व्यर्थ नहीं जाता है, मेरी चिंता का क्षमन कीजिए महाराज, आपके दर्शन से कुछ एहसास होता है, मैं नजीक गया। मैंने पूछा, देवी ये क्या है, ये वृद्ध पुरुष कौन है और तुम कौन हो और ये सखियां कौन है। बोले, महाराज मैं भक्ति हूं। वैसे तो ये भक्ति, ज्ञान और वैराग्य और मुक्ति अज्ञात रूप रहते हैं, लेकिन कभी कभी भगवत संकल्प से ये साकार दिखते हैं। तो भक्ति ने अपनी व्यथा बताई कि ये ज्ञान और वैराग्य महाराज मेरे पुत्र है। द्रविड़ देश में मैं उत्पन्न हुई थी, कर्नाटक में मैं बढ़ी, महाराष्ट्र में मैं सम्मानित हुई, गुर्जर देश में पहुंची तो वहां धूर्त और पाखंडी लोगों ने मेरा अंग भंग कर दिया। महाराज यहाँ भगवान की क्रीड़ा स्थली वृंदावन में आने से मेरा तो वृद्धत्व दूर हुआ। मैं तो थोड़ी ठीक ठाक हुई, लेकिन मेरे दोनों बेटे मूर्छित से हैं। होना तो ये चाहिए कि बेटे जुवान हो और माँ वृद्ध हो, लेकिन अब माँ तो युवती हो गई और बेटे मूर्छित वृद्ध पड़े हैं। महाराज ये कलयुग ने सत्व हर लिया है। ब्राह्मण भी धन की लालच से ही पढ़ते पढ़ाते हैं, साले सलाहकार बने, स्त्रियों की घर में चलने लगती है। त्यागी भी भोगी और रागी बन गए। महाराज जो चित्त को शांति देने वाले हैं, वे स्वयं भी चित्त की दशा में न जाने कहां कहां बह जा रहे। भगवान ने ऐसे कलयुग को क्यों रचा होगा, ये लोगों का ज्ञान बढ़ाने का प्रश्न करती है भक्ति देवी। इसका उत्तर यह है कि जैसे बेटा चलते चलते जरा सा गिर जाता है तो माँ बाप उसे उठाते रहे, वो जरूरी नहीं, कभी कभी तो चतुर माँ बाप ठंडी में ठुठरते बच्चे को ठंड में पक्का मजबूत बनाते, गर्मी में सहो कर मजबूत बनो। ऐसे गिरते गिरते चल पड़े तो अपने बल से उठो। ऐसे सतयुग द्वापर त्रेता युग में अपनी व्यवस्था थी, कलयुग में ऐसा वातावरण है कि भाई गिरो, अपने आप उठो, और नहीं उठते तो मुझे पुकारो ताकि मैं जल्दी तुमको गले लगाऊं। ऐसा ये कलयुग बड़े सुविधा वाला युग है, बड़ी जल्दी से सफलता देने वाला युग है। बुद्धिमान परीक्षित राजा ने कलयुग के दोष तो बहुत सुने कि सुवर्ण में मेरा वास रहेगा, कलयुग में खुले आम मांस बिकेगा, शराब बिकेगा, लोग अल्पायु होंगे, स्वार्थी होंगे, उपद्रवी होंगे, कलयुग का प्रभाव में इतना इतना दुख होगा, पृथ्वी सार रहित, यज्ञ पुरुष खीर का कटोरा तो क्या पानी का गिलास भी नहीं ले आता, ऐसे भी कभी प्रभा दर्शन नहीं देता। कलयुग सारे धर्मों कर्मों को सुख शांति के साधनों को निकल जाए। ये सारे दोष होते हुए भी कलयुग में एक सद्गुण देखा बुद्धिमान परीक्षित ने कि सतयुग में द्वापर में त्रेता में 12-12 वर्ष तक तप ध्यान साधन करने से जो फल की प्राप्ति होती है वो कलयुग में भगवान नाम स्मरण मात्र से एक माला जितना जप ध्यान हो जाए तो उतना फल हो जाता है, श्रीमद् भागवत के महात्म में लिखा है। 68वां अध्याय है श्लोक। यत फलम नास्ति तपसाम न योगे न समाधिना तत् फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तनात्। भगवान की कीर्ति, भगवान के नाम का जप, भगवान के नाम का सुमरण करते करते भगवत विश्रांति कलयुग में आसानी से हो जाए। जो फल तपस्या से, योग से एवं समाधि से भी नहीं मिलता था, कलयुग में वही फल श्री हरि की कीर्ति भक्ति से भली भांति मिल जाता है। तो भक्ति ने कहा कि नारद जी, आपने कयादु पुत्र प्रह्लाद पर कृपा की, उसे आपने उबार लिया, आपने ध्रुव पर कृपा की। हे संत रत्न, मेरे चिंता को शोक को भी आप ही शमन कर सकेंगे। महाराज सनकादि ऋषियों को नारद जी कहते, महाराज मैंने उसे टाढ़स बंधाई, उसके पुत्रों को मैंने जगाने का प्रयत्न किया और मैंने उसे वचन दिया कि बाले तू चिंता न कर, श्री हरि ने लोगों को पुष्ट करने के लिए तुझे धरती पर रखा है, तुझे दो बेटे हैं ज्ञान और वैराग्य और मुक्ति तेरी दासी है, लेकिन कलयुग के दूषित कर्म धोखेबाज लोगों की बाहुल्यता अकर्मण्यता और दुष्चरित्र और दुष्ट आहार करने वालों लोगों की बाहुल्यता से कलयुग का प्रभाव बढ़ा, इसलिए मुक्ति तो तुम्हारी आज्ञा लेकर वैकुंठ चली गई। जब कभी तुम तीव्रता से बुलाती हो तब आती और फिर चली जाती, लेकिन बाले तुम तो यहीं रहो, भगवान श्री हरि की श्री कृष्ण की भक्ति तुम पर विशेष कृपा है, तुमने जब आज्ञा शिरोधार्य की तो भगवान तुम पर प्रसन्न है। बाले में तुझे गांव गांव घर घर तो क्या हृदय हृदय में स्थापित करूंगा और तेरे बच्चों को मूर्छा से पार जागृत अवस्था में युवा अवस्था में ले आऊंगा। महाराज मैंने वेद पाठ की ध्वनि की, मैंने गीता का पाठ सुनाया, मैंने पानी छिटका, मैंने शंखनाद किए, लेकिन मानो गहरी मूर्छा में पड़े थे, कभी कभार थोड़ी आंख खुली न खुली, फिर जाने अनजाने वो निद्रा का अथवा मूर्छा का अनजाने में जो ब्रह्म सुख का किरण मिलता है उसमें खो जाते थे। मुझे आश्चर्य हुआ, इतने में आकाशवाणी हुई, साधो तुम यत्न करो सफल हो जाओगे। मैं सोचा क्या यत्न करूं, कैसे सफल होऊंगा, आकाशवाणी ने यत्न करने को तो कहा लेकिन क्या यत्न करूं कैसे सफल हो। मैं साधु संत ऋषि मुनियों के आश्रमों में भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य को पुष्ट करने को और भक्ति का दुख मिटाने को, घर घर में हृदय हृदय में भगवत भक्ति की स्थापना का उपाय पूछने गया। किसी ने कुछ बहाना बनाया, कोई तो ये जान गए कि नारद जी मेरे से पूछने को आएंगे तो आश्रम से ही पलायन कर गए। अब मैंने महाराज संकल्प किया और उसको वचन दिया, मैं बद्री का आश्रम जाकर तप करके भगवान नारायण से ही पूछूंगा कि कलयुग के दोष कैसे। महाराज आप भी नारायण स्वरूप हैं, आप तो सत्व प्रधान है, आदि संकल्प से आप प्रकट हुए, आप हैं तो बुजुर्गों के बुजुर्ग, लेकिन आपने सत्व बल से 5 वर्ष के ही विचरण करते हैं और आप विशेष जन लोक में ही रहते हैं और वहाँ ब्रह्म चर्चा ब्रह्म रस ब्रह्म सुख कथा का आनंद ही लेते हैं और कोई परपंच आपको रुचता ही नहीं, आप भी हरि स्वरूप है महाराज। तब सनकादि ऋषि प्रसन्न होकर नारद जी को कहते हैं, देव ऋषि भगवान नारायण ने जो चतुर्श्लोकी भागवत सुनाई थी ब्रह्मा जी को और ब्रह्मा जी ने तुमको दी, उसको तो कोई तीव्र विरक्त पुरुष जान सकता है, लेकिन आम आदमी के लिए इसी भागवत का तुमने वेद व्यास जी को कहा और विस्तार किया है, वो विस्तार से सप्ताह श्रवण अगर करेंगे तो जो भी भगवत कथा सुनेगा उसके कलयुग के दोष मिटेंगे, उनका मूर्छित वैराग्य और ज्ञान जागृत होगा। अब यहाँ ध्यान से सुनना, दर्शन शास्त्र की बात आती है। नारद जी कहते हैं भक्ति के पुत्र मूर्छित है, तो भक्ति के पुत्र मूर्छित हैं ज्ञान और वैराग्य, तो भक्ति दुखी है, भक्ति रो रही है। अब आप खूब ध्यान देना, अगर भक्ति का दुख मिटाना और भक्ति को सफल करना हो तो उसके बेटे ज्ञान और वैराग्य मूर्छा से बाहर आने चाहिए, कोमा में चले गए। कोमा से बाहर निकालने की, आजकल की जो कोमा होती है उसको बाहर निकालने का मंत्र है, एक दिन में कैसा भी कोमा वाला हो एक दो दिन में वो बाहर आ जाएगा आराम से। चंदीराम भी कोमा में चले गए थे, वो तो 1.5 घंटे में बाहर आ गए। मूर्छा ऐसा नहीं 3-3 महीना कोमा में पड़ा रहे, 2-2 महीना, ये तो लूट है।
एक दो दिन में तीन दिन में कोमा से बाहर आ जाना चाहिए पेशेंट। सरल मंत्र है और उपयोग उपाय है आयुर्वेदिक ढंग का। खैर ये कोई बीमारी की कोमा नहीं थी, मूर्छा नहीं थी, ये तो कलयुग का प्रभाव था। ज्ञान और वैराग्य को कोई पूछता ही नहीं। वृंदावन में भक्ति महारानी तो है, प्रसन्न हुई, पुष्ट हुई, लेकिन उसका बेटा ज्ञान और वैराग्य सी वृंदावन में मूर्छित पड़े। इस कथा से ये समझना है कि आप जिसकी भक्ति करते हो उसका ज्ञान होना चाहिए, वो कहाँ रहता है, कितना दूर है और उसका वास्तविक स्वरूप क्या है। ये ज्ञान नहीं होगा तो भक्ति बिचारी रोती रहेगी। अर्थात ज्ञान आपको इस ईश्वर तत्व के ज्ञान का आपके अंतःकरण में पुष्टि होनी चाहिए। वैराग्य पुष्ट हो, मूर्छित ना हो, जिस परपंच से जिस दुख दुखाले और जन्मों मरण के चक्कर में ले जाने वाली वासना बढ़ाने वाली प्रवृत्ति में संसार में सतबुद्धि है, उस संसार से की आसक्ति से वैराग्य होना चाहिए। तो ज्ञान और वैराग्य आपका पुष्ट होगा तो जैसे मूर्छित ज्ञान वैराग्य है तो भक्ति दुखी रहती है। नारद जी ने कथा करवाई और ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर हुई, भक्ति महारानी पुष्ट हुई। इस कथा से हमें ये समझना है कि हमारे जीवन में भी ज्ञान और वैराग्य की वृद्धि हो। तो ज्ञान वैराग्य के लिए सुंदर उपाय है कि हमारा मन रस और शांति चाहता है। अगर उसको एक रस संसारी सेटाओ तो दूसरी रस, चाय छुड़ाओ तो कॉफी पिएगा, कॉफी छुड़ाओ तो कोई ठंडा पिएगा, ठंडा छुड़ाओ तो और कोई पिएगा। उसको चाहिए रस। अगर रस लेने का तरीका सत्संग और ध्यान के द्वारा आ जाए तो आत्मिक रस का स्वाद आ जाए तो बाहर के रस का आकर्षण छूट जाएगा। तो आपने करने की शक्ति का सदुपयोग कर लिया। मानने की शक्ति, ये मिले तो सुखी हो जाऊं, ये पाऊं तो सुखी हो जाऊं, ये पाऊं तो सुखी हो जाऊं, ये बेवकूफी छूटते ही अपने आप में अपने आप के सुख को पाने का आपने सदुपयोग कर लिया।